أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. سورہ یاسین قرآن کریم کا وہ سورہ ہے جس کی تلاوت آج کی رات دنیا بھر کے صاحبان ایمان، مومنین اور مومنات اپنے لیے بھی کرتے ہیں اور اپنے مرنے والوں کے لیے بھی، کہ موت کے مراحل کو آسان کر کے جنت تک پہنچانے میں مدد دینے والا یہ بہترین سورہ معصومین نے قرار دیا. دعائے کمیل، زیارت وارثہ اور سورہ یاسین. اور اس جملے کے ذریعے ایک بار پھر میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ شب جمعہ آ گئی ہے، اور شب جمعہ کے حوالے سے تین چیزیں اکثر یاد دلانا پڑتی ہیں کہ یہ آج کی رات عام رات نہیں. آج کی رات یہ وہ رات ہے کہ زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنے کی رات ہے. اور یہ جو ابھی آیت کی میں نے تلاوت کی، الم آہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، ہم نے تم سے عہد لیا تھا کہ ان لا تعبد الشیطان، کبھی شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت دنیا میں کتنے لوگ کرتے ہیں؟ جو عبادت کا ایک کنسپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے، ایک آدھ فرقہ تو ہے جس کا نام ہی فرقہ شیطانی، جو شیطان کو خدا سمجھ کر اس کے آگے پیشانی جھکاتے ہیں. لیکن ویسے کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یا قرآن نے لفظ عبادت کیوں استعمال کیا؟ جو تین دن سے ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، اس سے اس کا تعلق ہے، تبھی یہ آیت میں نے آج تلاوت کی، شیطان کی عبادت. لیکن ابھی ذرا سی، آج کی رات شب جمعہ ہے، اس لیے ایک تمہید، اس کے بعد میں اس پہ آتا ہوں. شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ اپنی دشمنی کو اگر چھپا کے رکھے اور تم اس کے دھوکے میں آ جاؤ تو پھر سمجھ میں آ جاتا. اب ہمارے یہاں یو پی میں ایک محاورہ ہے جو شاید ہندوستان کے ماحول میں بیان کرنا مناسب بھی نہ ہو، کہ بغل میں چھری منہ پہ رام رام، کہ اس سے اگر آپ دھوکے میں آ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن جو کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن، وہ کیسے تمہیں دھوکا دے رہا ہے؟ تم اس کی بات کیوں مان رہے؟ وَأَنَي بُدُونِ، اب دیکھو میری عبادت کرو. اچھا، اب اللہ نے یہاں پہ بہت اہم ایک اصول بتایا جو باب الحوائج ابی الفضل العباس کے اس خطبے میں بھی ہے جو کربلا سے پہلے آقا عباس نے خطبہ دیا. مجھے تو پڑھنے کا وقت نہیں ملے گا، لیکن میں اس سے پہلے کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں. گوگل کے سرچ انجن میں جائیے، خطبہ اور حضرت عباس، یا سرمن آف حضرت عباس، پورا خطبہ مل جائے گا. تو اس میں بھی آقا عباس نے کربلا جانے سے پہلے ایک اہم ترین اصول بتایا، وہ قرآن کی اس آیت میں، میری عبادت کرو. تب کیوں تیری عبادت کریں؟ بھائی اس کے بہت سارے جواب ہیں. ایک تو مولا کا جواب ہے کہ میں جنت کے لالچ میں بھی تیری عبادت نہیں کر رہا، جہنم کے ڈر سے بھی تیری عبادت نہیں کر رہا. وجدتک مستحقا للعبادہ فعبدتک، اے خدا، میں نے تجھے عبادت کا مستحق حقدار پایا ہے، عبادت تو صرف تیری ہوگی، اس لیے عبادت کر رہا ہوں. جنت ملے کہ نہ ملے، جہنم سے بچے آدمی کہ نہ بچے، ایک تو یہ جواب ہے. اور پھر قرآن کریم نے ایک جواب یہاں پہ یہ دیا، میری عبادت کرو کیونکہ یہ سیدھا راستہ ہے جو تمہیں بتایا جا رہا. اب یہ ان دونوں میں، میری عبادت کرو اور ھذا صراط مستقیم، ان دونوں میں بہت گہرا ایک ریلیشن یا ربط یا کنیکشن ہے، لیکن آج کے لیے نہیں. تو شیطان کھلا دشمن. آج کی رات زمانے کے امام کو یاد کرنا ہے، اور ابھی ہمارے نوجوان ساتھی کتنا اچھا استغاثہ بارگاہ امام میں پیش کر رہے ہیں. یہ استغاثہ کہلاتا ہے، امام کو بلانا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ امام کا آنا سب سے زیادہ خطرناک، शैतान के लिए बनेगा। सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में, दुनिया नहीं यूनिवर्स, कायनात में, ये तो हदीसों में है ना कि और भी प्लेनेट पर इंसानी आबादी है, या अल्लाह की और साहिब अकल मखलूक है, मगर सबसे ज्यादा जो परेशान है इमाम के आने से वो शैतान। इसलिए कि आदम से लेके आज तक शैतान को अल्लाह ने प्रोटेक्शन दिया, लेकिन ये कहकर दिया है कि जब इमाम आ जाएंगे तो फिर तेरी मौत। मैं वाकयात तो नहीं पढ़ रहा, आयतें नहीं पढ़ रहा, वक्त मालूम की तफसीर नहीं बयान कर रहा, क्योंकि वक्त भी नहीं है और इतने पढ़े लिखे मजमे में जरूरत भी नहीं। कहा कि और कोई नबी आता रहे और कोई भी वसी आता रहे तेरे खिलाफ, लोग कुछ भी करते रहे, एक इत्मीनान रखना, तुझे मौत नहीं आनी। मौत आएगी जब वो आखिरी हुज्जत खुदा जाहिर होगी, तो जहूर इमाम शैतान के लिए पहली बार मौत का ऐलान। इससे पहले किसी नबी, किसी वसी, किसी इमाम, किसी वली खुदा, किसी हुज्जत खुदा के दौर में शैतान को यह परेशानी नहीं थी। हजरत मूसा ने अल्लाह से वो दुआ जो मांगी थी, क्या है, खुदा ये नजूमियों के हिसाब किताब में गलती पैदा कर दे, ये नजूमी सितारों के जरिए जो फ्यूचर आपको बताते हैं, ये शुरू से ही एक नॉनसेंस इल्म नहीं था। पहले इनकी हर खबर या प्रेडिक्शन या फोरकास्ट सही निकलती। चुनाचे हजरत इब्राहिम की पैदाइश से पहले नमरूद को जो खबर दी नजूमियों ने, कितनी 100% परफेक्ट थी। हजरत मूसा की विलादत के मौके पे फिरौन को जो खबर दी, कितनी परफेक्ट थी। वो गए, वो मर गए, और फिर उसके बाद मूसा के लश्कर को कामयाबी हुई। और इसका एक बहुत रीजन भी रिवायतों में कि जो सूरज पलटाने के मौजिजात हैं, ये सबसे पहले तो मूसा के जमाने में पेश आए, वहां से ये सिस्टम बिगड़ा सितारों का। खैर, अब ये मैं कहीं और चला गया। बात कहना ये थी कि शैतान को यकीन, आदम आ जाए, कि नूह आ जाए, कि इब्राहिम आ जाए, कि मूसा आ जाए, कि सुलेमान आ जाए, कि दाऊद आ जाए, कि रसूल खुदा आ जाए, नऊज़ु बिल्लाह तौहीन के लिए नहीं कह रहा, मौला अली आ जाए, आका हुसैन आ जाए, मेरी मौत तो है ही नहीं। चुनाचे उसका अंदाज ही बिल्कुल अलग है। आगे बढ़ बढ़ के रिस्क ले ले कि हम पे हमले करता है कि मुझे कोई मार तो नहीं सकता। हाँ, जमाने का इमाम आएगा तो मेरी मौत है। अब उसे यह पता है कि मेरी मौत इमाम जमाना है, उनको नहीं आने देगा। हमें फरियाद करना पड़ रही है। अभी हमारा ये बच्चा इस्तगासा कर रहा था, मौला आ जाइए, मौला आ जाइए, हमको फरियाद करना पड़ रही। और शैतान पूरा जोर लगा रहा कि इमाम ना आने पाए। उनके आने का मतलब शैतान की मौत। अपनी मौत को कौन कबूल करता है? तो अब शैतान डिले करा रहा। अब जहां तक इस बच्चे ने पढ़ा, मैं उसके बाद का जुमला कह रहा हूं। फरियाद थी, हमारी भी फरियाद थी, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्को इलैका फक्त नबीयना व गैबता वलीयना। हम भी ये फरियाद करते हैं कि खुदावंदा हमारा वली, सरपरस, गार्जियन, प्रोटेक्टर गायब क्यों है? 30 दिन रमजान में यह दुआ पढ़ी जाती है। लेकिन ये तो हमने कहा, उधर से जवाब मिलेगा इसलिए कि तुम इमाम को जाहिर करना चाह रहे और शैतान इमाम को रोकना चाह रहा। वो पूरा जोर लगा रहा है कि इमाम ना आने पाए। तो अब ये शैतान के कंट्रोल में है कि इमाम को रोक दे? डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, इनडायरेक्ट है। वो इमाम के मानने वालों को ऐसा बना देता है कि इनको देखकर फिर इमाम कहते हैं कि अभी नहीं आऊंगा। हम में वो खराबियां पैदा कर देता है। इमाम सिर्फ हमको देख के जाहिर होंगे, हम तैयार नहीं है। इंटेंशनली नहीं, इंटेंशनली हर मोमिन कहता है इमाम आ जाए। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज और इग्नोरेंस, जो 3 दिन से बात हो रही थी, अलग अलग मिसालें दी जा रही थी, उसकी वजह से कुछ हमारे एक्शन ऐसे होते हैं कि इमाम नहीं आते। बाकी बात तो बहुत लंबी होगी। आज मुझे इमाम का सिर्फ इसलिए जिक्र करना था कि एक तो जो मुझसे पहले कलाम पढ़ा गया वो इमाम के बारे में, आज की रात इमाम के बारे में, और जो असल मेरा मौजू कि शैतान क्या तरीका इख्तियार करता। वरना तो कल की रात शबे आशूर, कल 9 मुहर्रम का दिन, 9 मुहर्रम को अरबी में कहते हैं तासुआ। परसों है आशूरा, कल है तासुआ। तिसआ से निकला, यौम हुसिरा फीहिल हुसैन, जिस दिन चारों तरफ से हुसैन मुहासरे में आ गए। तो कल की जो रात आएगी, पूरी रात और आशूरे का पूरा दिन आप इमाम जमाना को याद करेंगे। यही तो आप करेंगे ना, आजम अल्लाह हुजूरना व हुजूरकुम बिमुसाबिना बिल हुसैन व जअलना व इयाकुम मिन अत्तालिबीना बिसारिही मा वलीहिल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहि सलातु व सलाम। शब आशूर और पूरा आशूर का दिन यह दुआ मांगने का हुक्म है। जब भी एक दूसरे से मिलो, अल्लाह हमें और तुम्हें लश्कर इमाम में शामिल करे ताकि हुसैन के खून का इंतकाम लिया जाए। ये दुआ का जुमला मिनत तालिबीन, हम तलब करें बेसारे ही खून हुसैन का इंतकाम। तो ये कल की रात, पूरा दिन परसों का आप इमाम को याद करेंगे तो आज शब जुमा भी जिक्र इमाम जरूरी है, मगर इतना काफी। मगर यही बात कि यहां पर यह सवाल कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, जिस आयत से मैंने बात शुरू की। अब मौला की एक हदीस और सुन लीजिए, ताकि परसों जब ज़ियारत आशूरा आप पढ़ेंगे और उसमें कातिलान इमाम और दुश्मनान इमाम के नाम भी आएंगे और उन पर लानत भी होगी, पूरे पूरे खानदानों का तस्किरा होगा। तो ये हदीस उसी ज़ियारत आशूरा के कनेक्शन में है, लेकिन आज इसलिए पढ़ रहा हूं, आशूरे के दिन नहीं पढ़ रहा हूं, आज इसलिए कि जो मेरा असल मौजू है ये उसका हिस्सा। और वो ये कि एक बार किसी ने, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं हदीसों को, टाइम नहीं, मौला से पूछा कि मौला ये जो आप बार बार और बार बार और बार बार कहते हैं कि हमारे जितने दुश्मन हैं इन सब से रिवेंज और बदला मेरा बेटा लेगा। सारे मजालिम तो अली के जमाने में शुरू हो गए ना। आशूरा तो आशूरा है, लेकिन सोचिए आप, क्या आशूरे से कम है पहलुए जहरा पे कोड़ा पड़ना? क्या आशूरे से कम है फातिमा की पसलियां टूटना? क्या आशूरे से कम है मां के पेट में मोहसिन का शहीद होना? तब ये मजालिम तो शुरू हो गए। और हमारे उर्दू में कहावत है, एक कहावत है, वो भी नहीं है, कहावत हमारे यहां ये, मजबूरी का नाम सब्र। बहुत से लोग सब्र करते हैं मजबूरी में। मौला के यहां तो ये मसाला भी नहीं। साहिब जुल्फिकार है, साहिब ला फता इल्ला अली, ला साहिब इल्ला जुल्फिकार, फातह खैबर है, फातह बद्र ओहद है, ज़रबतो अली अफजल मिन इबादत सकलैन है, बरजल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही है। मजबूरी नहीं है मौला, आप सब्र कर रहे हैं। उर्दू में कहते हैं कि मजबूरी का नाम सब्र। आप मजबूर हो गए तो आपने सब्र कर लिया। मौला तो मजबूर भी नहीं है, और इतने बड़े बड़े जुल्म जो करबला के जुल्म से ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। बास जुमले तौहीन वाले बन जाएंगे, इसलिए मैं मिसाल नहीं दे रहा हूं। लेकिन करबला के जुल्म से, जैसे मसलन अगर मैं कह दूं ज़ैनब कुबरा के पहलू के कोड़े से ज्यादा जुल्म होगा ज़हरा के पहलू पे कोड़ा, जरा तौहीन वाला जुमला, चाहे बात सही भी हो तो मैं ये मिसालें नहीं दे रहा हूं। तो करबला के जुल्म से बड़े जुल्म, और आप ताकत भी रखते हैं, तो फिर किस बात पे सब्र कर रहे हैं? का इसलिए कि अल्लाह ने हमारे तमाम दुश्मनों से इंतकाम हमारे बेटे के हाथ में रखा, वो आके इंतकाम लेगा। और ये मौला से बात शुरू हुई, बाद में हर इमाम ने इसी बात को उस वक्त रिपीट किया जब उस इमाम के जमाने में पूछा गया। जरा सा मैं आज फास्ट पढ़ रहा हूं क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया मेरे पास, बातें बहुत सारी। तो हर इमाम से पूछा गया, मौला आप इस जुल्म पे खामोश क्यों रहे? का इंतकाम वो लेगा। तो अब लोगों के जहन में ख्याल आया, वो आने वाला किस किस से इंतकाम लेगा? अली के इतने सारे दुश्मन, मासूमीन के दुश्मन। सवाल किया किसी ने कि मौला तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन? अब हमारे यहां भी अगर कोई सवाल करे कि ज़ियारत आशूरा में आप इतनी लानतें भेजेंगे, मगर इनमें सबसे बड़ा कौन है जो लानत के सबसे पहले हकदार है? तो शायद आप कहें कि जो सीक्वेंस है उससे हटके लानत की सीक्वेंस अलग होती है। लेकिन मैं उधर उस तरफ जा नहीं रहा हूं। मौला सबसे बड़ा दुश्मन, मौला ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन है जिहालत। ये क्या चीज है? लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस। ये बनो मैया, ये यजीद, ये शेमर, ये मुआविया हाकिम शाम, ये उससे पहले वाले, ये उसके बाद वाले, इन सबसे बड़ा दुश्मन है मुसलमानों की जिहालत, लैक ऑफ नॉलेज। अहले बैत की मारिफत नहीं, उन्हें पता नहीं कि अहले बैत कौन। और जालिम हुक्मरानों ने मुसलमानों को इसी हालत में रखना चाह। अगर लोग जाहिल न होते तो ना बनो मैया में हिम्मत थी, ना बनो अब्बास में हिम्मत थी, ना उनसे पहले वालों में, कि हम पे जुल्म करते। देखिए करबला के बाद अवेयरनेस आई, सुलेमान इब्ने सुरद ने जिहाद किया, मुख्तार ने जिहाद किया, जैद शहीद ने जिहाद किया। कहा कि ये जिहालत, करबला का एक मकसद है अवेयरनेस पैदा करना, का जिहालत। यही कुरान की उस आयत का मैसेज जो इमाम जमाना के हवाले से भी मैंने पढ़ी, और जो असल मौजू, शैतान तुम्हें बहकाएगा। तो जो तीन दिन पहले की बात आई थी, आखिरी जुमला उसको रिपीट करके बात को आगे बढ़ाता हूं। कहा कि शैतान जब किसी मोमिन को किसी तरह से मिसगाइड नहीं कर पाता, तो फिर वो उसकी जिहालत और लाइलमी से फायदा पहुंचाता। बड़े बड़े गुनाह हमसे हो जाते हैं लाइलमी की वजह से। आज का दूसरा मौजू क्या है? आज का दूसरा मौजू है मौत को याद करना। तो अब ये मौत के हवाले से भी वसीयत तैयार नहीं हो रही, नतीजे में बड़े बड़े गुनाह हमारे घरों में होते हैं। या वसीयत के अलावा भी मरने वाले के मीरास की तकसीम कितना बड़ा मसला। एक सेंट इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, यहां पे गुनाह की नियत से नहीं, और किसी के माल पे कब्जा नहीं करना, लेकिन गुनाह हो रहा है लाइलमी की वजह। अभी कल यहां देखिए, मैं मजलिस में लेट नहीं आ रहा हूं, मैं बहुत पहले, एक घंटा पहले, डेढ़ घंटा पहले इमाम बारगाह के हुदूद में आ जाता हूं। लेकिन यह है कि चूंकि बड़ी रातें हैं, मरसिए ज्यादा हैं, तो आपको लगता है कि शायद आज मौलाना लेट हो गए। लेकिन बात यह है कि अभी कहीं बात हो रही थी इसी प्रेमिसेस के अंदर कि नाबालिग बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको गिफ्ट मिले हैं, वालिदैन ने तकसीम कर दी। भाई बहुत सारे हो गए, एक भाई के बेटे को दे दो, एक बहन के बेटे को, ये हराम और गुनाह। और यही अगर मसाला पता चल जाए तो बिल्कुल जायज है। बिल्कुल जैसे कल मैंने मिसाल दी, एक जुमला शौहर बीवी से कह दे गुनाह है कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह, जायज हो जाएगा, गुनाह नहीं रहेगा, जायज अमल होगा। ये शैतान आहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत न करना। तो शैतान जब हमें कोई और गुनाह के जरिए से नहीं बहका पाता है तो यहां फायदा उठाता है, जिसके नतीजे वो गुनाह हमसे होता है कि जो लोगों को दुश्मन इमाम बनाता, माले हराम पेट में जाना। हराम हराम की नियत से हम नहीं खाते, हमें पता ही नहीं कि यह भी हराम हो रहा। अब इसकी कुछ मिसालें आएंगी, लेकिन यह लाइल्मी का नतीजा यह निकलता कि आदमी अपने अपने मगज से दीन को समझता। दीन है कामिल, तुम्हारा मगज है ना इनकम्प्लीट, कैसे समझ में आएगा? अपने मगज से समझोगे तो वही जाहिल बद्दू आराबी का वाकया बनेगा कि नमाज तोड़ के भागोगे। वो बहुत मशहूर वाकया है ना कि नमाज तोड़ के भाग गया। आराबी उसे कहते हैं जो जंगल में रहता है, महीने में एक बार जरूरी चीजें खरीदने शहर में आता है, फिर जंगल अकेला, एक ऊंट, वही उसकी सारी जिंदगी। वो आ गया, नमाज का वक्त था, मस्जिद चला गया। इमाम जमात ने सूरह बकरा शुरू कर दी। सूरह बकरा दो पारों से भी ज्यादा है, घंटा लगेगा उसके अंदर, एक घंटे से ज्यादा। उसको क्या पता था कि नमाज का मतलब फंस जाऊंगा मैं, पहलू बदल रहा था, यह भी नहीं मालूम कि कितनी देर में खत्म होने वाला है सूरह बकरा। वो हाफिज कुरान तो है नहीं। आपने देखा होगा कि जब बुक के जरिए से दुआएं पढ़ी जाती थी, अगर कोई लंबी दुआ मौलाना ने शुरू कर दी तो लोग पेज उलट के देखते थे कि कितने पेज बाकी हैं। अब ये तो आजकल स्लाइड विलाइट आ जाती है, किताबें भी खत्म हो रही, तो अब यह है कि इसको क्या मालूम, अब खत्म अब खत्म अब खत्म, और डेढ़ घंटा लग गया नमाज में। खैर, नमाज पढ़ के गया, अगले महीने फिर शॉपिंग के लिए आए, उसी मस्जिद में गया तो इन इमाम साहब ने सूरह फील शुरू कर दी। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, फील कहते हैं हाथी को। अच्छा, वो सूरह फील इतना सा, इतना इतना मुन्ना सा सूरह, इतना मुन्ना सा, चार या पांच आयते, अलम तरकै वफाल अरब कब असाबिल फील अलम या जल कह दो फी तसरी, बहुत छोटा सा सूरह। उसको क्या मालूम, अपने मगज से सोचा गाय का सूरह तो इतना बड़ा था तो हाथी का सूरह तो इतना बड़ा होगा, रात तक यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, नमाज तोड़ के भागा। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अपने मगज से समझ रहा है इस्लाम को कि अगर गाय का सूरह बड़ा है तो हाथी का बड़ा होना चाहिए, जबकि यहां उल्टा मामला। भाई ये इस्लाम है। अब ये तो बहुत जोक वाली मिसाल है, मैं सीरियस मसाला बता दूं, और सीरियस मसाला भी जोक बन जाता है। जब आप हज करने जाते हैं ना, आज कुछ हज उमरे की एक दो बात निकलेगी, तो जब आप एहराम पहन लेते हैं तो बहुत सी चीजें हराम हो जाती, उनमें से एक चीज है आईना देखना। मिरर, एहराम की हालत में मिरर नहीं देख सकते हैं तो मसाइल को थोड़ी बता रहा हूं कि पूरी तफसील में जाऊं, इन जनरल मसाला के एहराम की 25 हराम चीजों में एक मिरर, और ये मर्द और औरत दोनों पर हराम है, क्योंकि कुछ हराम चीजें हैं जो औरतों के लिए जायज हैं मर्दों के लिए हराम है। सिले हुए कपड़े और बंद गाड़ी, कुछ चीजें औरतों पे हराम है मर्दों के लिए जायज है, जैसे हाथों में ग्लव्स पहनना। आगा सिस्तानी तो कहते हैं कि किसी भी किस्म का ग्लव हो वो हराम है, मर्द के लिए जायज है, मगर ये मिरर सबके लिए हराम है। दिल तो बहुत चाहता है कि जरा देखे तो सही एहराम पहन के कैसे लग रहे हैं, ये यूनिक किस्म का ड्रेस है ना, आज तक जिंदगी में नहीं पहना, हराम। फिर कब मिरर की परमिशन मिलेगी, जब मीना के मैदान में आप अपना सर शेव करेंगे और गंजे हो जाएंगे, कहा अब देख सकते हो, अब तो देखने को दिल ना चाहे, अपना सर देख के खुद हंसी आ जाए, गंजे होने के बाद कौन आदमी अच्छा लगता। हज के काफिले लेके जाता हूं, खवातीन कंप्लेन करती हैं, मौलाना देखिए वो फलाना महरम, एकदम उसने रोक के बातें शुरू कर दी, भगाइए इसे, पता चला वो उन्हीं का शौहर था, मगर क्योंकि वो गंजा हो चुका था ना तो बीवी नहीं पहचान पा रही है कि ये कौन है। तो अब जब अपने आप को देखने का दिल ना चाहे तो इस्लाम ने कहा उठाओ मिरर और जितनी बार देखना है अपने आप को देखो, और जब दिल चाह रहा है कि हराम में कितने सोबर लग रहे हैं, कहा अब ये मिरर देखना हराम हो चुका। इसी का नाम इस्लाम है, जो खुदा कह दे जिस वक्त कह दे उसी को मानना, बुरा लगे तो मानना है, अच्छा लगे तो मानना। तो अब यह कि अपने मकसद से इस्लाम ना समझे, किसी ने कहा मौलाना ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस के खिलाफ, उस वक्त तो हराम कर दिया जब इजाजत देना चाहिए, और अभी इजाजत दे दी जब हराम करना चाहिए था, नहीं अपने इनकम्प्लीट जमात से इस्लाम को ना समझें, वरना सूरह बकरा को आप छोटा समझेंगे, सूरह फील को बड़ा समझेंगे, जो इस्लाम बताया। और ये कैसे होता है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और इसी की एक मिसाल कल मैंने इशारा किया था, आज भी तफसील का तो वक्त नहीं, कितना 11 बज गए हैं, अभी तो मजलिस शुरू भी नहीं हुई एक तरह से, तो बहुत जल्दी जल्दी बात। उमरा और हज, इतनी बात, ये मिसाल मैंने जानबूझ के दी सिर्फ ये पॉइंट समझाने के लिए। उमरा करना ज्यादा डेंजरस चीज है हज के मुकाबले। अच्छा, बहुत बड़ी इबादतें, बहुत सवाब है, डेंजरस का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपको केयरफुल करने की ताकीद कर रहा हूं कि केयरलेस बन के ना जाइए। अब किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने ये बात कही? उमरा हो के हज, मर्द हो के औरत, एहराम पहने बगैर ना उमरा होगा ना हज। ठीक है, औरत का एहराम डिफरेंट होता है, मर्द का एहराम डिफरेंट, लेकिन एहराम एहराम। जैसे ही आपको एहराम पहनते हैं, आप पे अराउंड 25 चीजें हराम हो जाती हैं। अब ये एग्जैक्ट फिगर तो नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि मराजे का इख्तलाफ, कुछ चीजें हैं, एक मर्जी हराम कहता है एहराम में, कुछ दूसरा मर्जी कहता है जायज। तो एक एस्टिमेटेड 25 चीजें हराम हो गई। ये कब हलाल होंगी? जब आपका उमरा मुकम्मल होगा, जब आपका हज मुकम्मल होगा। ये भी बहुत है टेक्निकल बात, इतने टेक्निकल बातों में नहीं जा रहा हूं। इन शॉर्ट, हज हो गया कंप्लीट, एहराम उतर गया, चीजें दोबारा हलाल हो गई जो एहराम की वजह से हराम थी। कुछ चीजें तो वैसे ही हराम है, जैसे झूठ बोलना, झूठी कसम खाना, लेकिन जो एहराम की वजह। उमरे में कब हलाल होंगी? जब आपका उमरा कंप्लीट हो गया। अब आइए एक मसला, जो मैंने एक और मिसाल दी थी कि नेल पॉलिश में ऊंट कैसे वाजिब होता है, तो एक और मसला सुनी। हज का एहराम आपने पहन लिया और शुरू किया हज, गलत कर दिया उसमें, या तवाफ में गलती हो गई, या तवाफ की नमाज में गलती हो गई, या सफा मरवा की सही में गलती हो गई। जो लोग हज पे नहीं गए हैं, अल्लाह तो हर एक को ले जाए, उनके लिए जरा ड्राई ना बने, मैं बहुत जल्दी बात मुकम्मल करता हूं। हज में आपने कोई गलती कर दी तो अब आपका एहराम नहीं उतरेगा। एहराम वो लिबास है जो पहना अपनी मर्जी से जाता, उतारा उस वक्त जाता जब अल्लाह कहेगा। ये नहीं है कि आपने कहा मेरा मूड चेंज हो गया, मैं एहराम उतार के पैंट शर्ट पहन के आ रहा हूं, अगले साल वापस आऊंगा, ये नहीं चलता है हज में। नमाज में हो जाता, नमाज आपने शुरू की, चाहे वाजिब नमाज क्यों ना हो, आपने कहा नहीं दिल नहीं चाह रहा, तोड़ के चले गए, गुनाहगार होंगे, मगर नमाज टूट जाएगी। रमजान के रोजे में भी आपने कहा नहीं भाई, नहीं रखा जा रहा रोजा, मैं पी लेता हूं पानी, गुनाह होगा लेकिन रोजा टूट जाएगा। हज नहीं है, हज अगर आपने तोड़ना भी चाहा, एक बार शुरू कर दिया, टूटेगा नहीं, यानी वो चीजें हराम है जब तक के सही हज ना करो। अलबत्ता अगर वो महीना ही खत्म हो गया, जिलहिज का जिसमें हज होता है, मुहर्रम का महीना शुरू हो गया, तो बहरहाल आपका फिर वो एहराम टूट गया, आप फारिग हो गए, गुनाहगार हुए, हज इनकम्प्लीट रहा, वो सब अपनी जगह, लेकिन एहराम खत्म हो गया, आप नॉर्मल हो गए। उम्रे में चूंकि कोई टाइम लिमिट नहीं, उम्रे में अगर आपने एहराम पहन लिया और सही तरीके से उमरा कंप्लीट नहीं किया, तो वो एहराम आप पर बाकी है। चाहे आप ये समझे कि मैंने बाल बाल काट लिए, एहराम उतर गया, आपके समझने से कुछ थोड़ी उतरेगा, वो चल रहा है। कब तक? वापिस एटलांटा आ गए, वो एहराम चल रहा, यानी वो चीजें हराम। आपने अपने नॉर्मल ड्रेस को पहन लिया, चीजें हराम, यहां भी आईना देखना हराम, यहां भी खुशबू लगाना हराम, यहां भी बंद गाड़ी में मर्द के लिए सफर हराम, चल रहा कब तक? मरते दम तक। एक बार उमरे का एहराम पहन लिया, जब तक के सही उमरा नहीं करेंगे, ये एहराम नहीं खत्म होगा, नहीं टूटेगा, वो हराम चीजें दोबारा हलाल नहीं होंगी। यानी आप जो मैंने जुमले कहे उसको फिर रिपीट कर दूं, यहां तक कि आप कहे अच्छा जितना भी गुना हो जाए, पेनल्टी हो जाए, सबके लिए मैं तैयार हूं, एहराम टूट जाए कब्र तक चलेगा, कब मरते दम तक। हज में ऐसा नहीं, हज में टाइम पीरियड है ज़िलहिज का महीना, उसमें अगर आपने सही हज मुकम्मल ना किया तो गुनाहगार होंगे, जानबूझ के अगर ये गलती की या लापरवाही से तो गुनाहगार होंगे, सब कुछ होंगे, मगर एहराम खत्म हो जाएगा। हां 20 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, नमाज में तो नहीं, वाजिब नमाज पढ़ते पढ़ते अभी आपने तोड़ी, इसी सेकंड टूट जाए। रोजे में ऐसा नहीं है, वाजिब रोजे में आपने इसी वक्त पानी पिया, टूट जाए। हज में कम से कम 20 दिन एहराम चलेगा, लेकिन चले 20 दिन के बाद सही। गुनाहगार हुए लेकिन उतर गया, उमरा नहीं। जिंदगी भर आईना देखना हराम, जिंदगी भर खुशबू का इस्तेमाल हराम, जिंदगी भर बाल तोड़ना हराम, जिंदगी भर जीनत करना हराम, जिंदगी भर वो 25 चीजें हराम। तो ये ज्यादा आदमी को सीरियस, कोई बहुत मुश्किल मसला नहीं है उम्रा। ऐसा नहीं है कि बहुत जहमत हो तो इसलिए हमने छोड़ दिया, लापरवाही, ला इल्मी, लैक ऑफ नॉलेज। मगर देखिए, यहां हज से ज्यादा मुश्किल चीज उम्रा, और हमारे यहां लोग हज में बगैर किसी आलिम के नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे भी तो मसाइल सीख के जाएंगे, उम्रे में बहुत लापरवाही से चले जाते हैं। और आजकल तो इतना ज्यादा नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है मक्के मदीने में कि नए नए मसाले पेश आ रहे हैं, हर साल नया अपडेट चाहिए होता है मर्जी से। अब जैसे उम्रा कैसे गलत होता है, एक मिसाल, रमजान में बहुत रश होता, सही, हमारी फिका के एतबार से सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे हो सकती है या अंडरग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं हो सकती। अगर किसी ने वो सही कर ली, उसका उम्रा इनकम्प्लीट, गलत भी नहीं हुआ। गलत होता तो ठीक है, टूट गया, आ जाओ घर, वो चीजें अब तक उस पर हराम। अगर इस मजमे में किसी ने, कराची में तो जब भी ये मिसाल देता हूं, मजमे में 5 आदमी मिल जाते, जी वो हम रमजान में गए थे, रश बहुत था, हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके सही कर ली, मैंने कहा अब तक एहराम चल रहा, फौरन घर जाइए, चादरें पहने, बल्कि घर भी ना जाइए, अगर इमामबाड़े में कहीं पे मिल जाए चादर वादर तो पहन लीजिए, और वो सारी चीजें हराम। कब तक हराम है, या उम्रा कंप्लीट करे या कब्र। और जैसा मैंने कहा, सही बहुत ऊंची की जा रही, 7 स्टोरी, शैतानों को कंकर मारने की जगह कितनी बड़ी कर दी गई, तवाफ वो जो सहन है उसके ऊपर पुल बनाया, पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, अपडेट होना पड़ता। ये भी नहीं कहेगा, हाँ 5 साल पहले उम्रा किया था, हमको अच्छी तरह मसले पता। आप जाएंगे, एक नया मक्का आपके सामने होगा, और एवरी ईयर मराजे भी अपडेट करते रहते हैं अपने मुकल्लिदों को, लेकिन अगर मुकल्लिद मसला सुनने ही को तैयार ना हो तो अब ये अपने मकसद से देखें तो दिमाग में आएगा उम्रा मुस्ताहब है, हज वाजिब, हज ज्यादा मुश्किल होना चाहिए उम्रे से। फिजिकली हज में ज्यादा जहमत है, लेकिन बात हो रही है इस एक खास टेक्निकल मसले। और जब हमने एक मिसाल सिर्फ ये समझाने के लिए दी कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कितने बड़े बड़े ब्लंडर करके लोग आते हैं, यानी गए थे सवाब लेने, उम्रा क्यों करते हैं हम, सवाब, हज क्यों करते हैं, सवाब, हुक्म खुदा की तामील, गुनाहे कबीरा से बची, हज वाजिब हो गया और नहीं किया तो ये यहूदी मरे या ईसाई, रसूल की हदीस। अब मालूम हुआ कि बजाय सवाब के हज जिंदगी भर के गुनाहों को धो देता, बजाय इसके कि जिंदगी भर के गुनाह धुले, बजाय इसके कि सवाब मिले, बजाय इसके कि अल्लाह राजी। हाँ, हो सकता है कि अल्लाह कुछ रियायत दे, क्योंकि ये इंटेंशनली आदमी गलती नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल गलती तो गलती। अब अपने जहन से सोचा, उम्रा छोटा लगा, हज बड़ा लगा, और जैसा कि मैंने कहा मुसलसल इसमें अपडेट हो रहा, जैसे अभी तवाफ के लिए ब्रिज बना दिया, कितनी आसानी हो गई है उस ब्रिज से तवाफ करने, और दो बनाए, ऊपर वाले ब्रिज से तवाफ गलत है, नीचे वाले ब्रिज से सही है, मगर एक टेक्निकल मसले के साथ, बस इससे ज्यादा नहीं। आज की रात बहुत सारे अपने मौजूआत, लेकिन जब कभी आप हज के लिए जाएं या उमरे के लिए तो मक्का और मदीना तो आप जरूर जाएंगे, अब बाकी और जगह भी हैं, हो सकता है वहां पे आप जाएं कि ना जाएं, जद्दा शहर है, वादी जिन है, बहुत सारी जगह, बद्र का मैदान है, लेकिन मक्का मदीना तो हर हाजी हर उमरा वाला जाता है। मक्के और मदीने बहुत सारे मैसेजेस, एक मैसेज ऐसा जो आज के मजलिस में इसलिए देना चाहता हूं कि इससे वो जो मेरा अपना मौजू है, लैक ऑफ नॉलेज क्या गलती करता है, क्या आदमी को प्रॉब्लम में डाल देता है, वो भी आगे बढ़ेगा। और साथ में आज जनाब अब्बास की हाजिरी के हवाले से भी एक बहुत अहम मैसेज मिल जाएगा। मक्का आप जाएंगे, मक्का, वहां पे आपको, आप में से जो नहीं भी गए हैं तो तस्वीर देख लीजिएगा, लाइव टेलीविजन और कंप्यूटर के ऊपर भी तवाफ आता, खाने काबा में काबे के बिल्कुल बराबर एक सेमी सर्कुलर यू शेप की दीवार बनी और उसके बिल्कुल ऊपर वो गोल्डन ड्रेनेज पाइप है जिससे बारिश का पानी काबे की छत से जमीन पे आता, वो यू शेप गोल्डन ड्रेनेज पाइप के बिल्कुल सामने, और उसकी हाइट इंसान की हाइट से थोड़ा ज्यादा ही है उसके बराबर। वो जो एक सेमी सर्कुलर वॉल है जो हिजरे इस्माइल कहलाती है, और ये बात बहुत मशहूर हो गई है और सही भी है कि औलाद के लिए वहां पे जाके दुआ मांगो, उसके अंदर जनाबे हाजरा की कब्र है और जनाबे इस्माइल की कब्र, दो कब्रें। हाजरा वो मां है जिसने औलाद के लिए ऐसी दुआ मांगी कि कयामत तक जमजम बना। हाजरा को अपने इस्माइल के लिए जमजम मिल गया, रबाब को अपने असगर के लिए पानी नहीं मिला। आज यौमुल अतश है, बच्ची और बच्चियां करबला के बच्चों की प्यास को याद करके आपके सामने भी आएंगे ये बच्चे। हाजरा को अपने इस्माइल के लिए पानी मिल गया, रबाब को न मिला, लेकिन हाजरा को जो पानी मिला, तो औलाद के लिए कोई दुआ हजरत हाजरा के कब्र पे खड़े होके मांगी जाए बहुत अहम है। इसीलिए जब से ये बात फेमस हुई है वहां पे जगह नहीं मिलती। अब वो जो सेमी सर्कुलर वॉल, उसके बारे में बहुत सारे उलमा का ये कहना, अहले सुन्नत बरादरान के यहां तो 100% कन्फर्म। हमारे यहां हिस्ट्री में इख्तलाफ है, लेकिन बहुत सारे उलमा हमारे भी यही कहते हैं कि एक्चुअल खाने काबा का ये पार्ट है। खाने काबा यहां तक था, जो आज आपको नजर आ रहा खाने काबा उतना नहीं है। ये जो गोल दीवार या सेमी सर्कुलर वॉल है, यहां तक काबा था। और एक जुमला मौजू से हटकर, मगर आज रात की वजह से बस खाली एक जुमला, जाहिर होने के बाद सबसे पहला काम इमाम करेंगे काबे को दोबारा डिमोलिश करेंगे और दोबारा बनाएंगे अपने दादा इब्राहिम के नक्शे पर। यानी आज का काबा इब्राहिम जैसा नहीं, चेंजेस हैं। बस अब छोड़ दीजिए, अगर उधर मैं गया तो एक अशरा भी कम है। मगर वन ऑफ द चेंज ये है कि दीवार काबा को, जहां गोल्डन ड्रेनेज पाइप मीज़ाब रहमत है, उसे तोड़कर ये गोल दीवार को काबे में मिलाया जाए। एक ही आपको मक्के में आंखों के सामने ये चीज नजर आई। अब सवाल यह है कि ये पार्ट ऑफ द काबा है तो काबे से बाहर क्यों चला गया, तो क्यों आउटसाइड काबा कैसे गया ये? और उसका रीजन यह है कि जब बारिश हुई थी मक्के में हजरत अबू तालिब के जमाने में, तो पूरा काबा टूट गया था। अब दोबारा बनाना, कई बार काबा बना, लेकिन अब जो दोबारा बना रहे हैं तो काबे की दीवार रुक नहीं रही, बनती है टूट जाती है, बनती है टूट जाती है। जैसे याजूज व माजूज एक कौम है, कहा जाता है ना कि वो जो दीवार है रोजाना वो इस दीवार में होल करते हैं, रात हो जाती है वापस घर जाते हैं, अगली सुबह को आते हैं दीवार फिर दोबारा कंप्लीट, फिर उन्होंने मेहनत शुरू की। बहुत सारे मोमिन भी इसी तरह से इबादतें करते हैं, पर रोज आना स्क्रैच से हर काम शुरू करते हैं। खैर, तो अब बात यह है कि काबे की दीवार, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, 40 मिनट का यह वाकया है, 4 मिनट में बयान करना। और जो लोग हज या उमरे पे मक्का होके आए, वो तो मजा ले रहे होंगे, उनकी आंखों के सामने मस्जिदुल हराम, काबे का सहन, काबे की दीवार, ये गोल दीवार, वो गोल्डन ड्रेनेज पाइप, वो सारे मनाजिर आ रहे होंगे। और जो नहीं गए हैं तो उनसे मैं एक चीज कहता हूं, मजलिस की वजह से, इस मिंबर की वजह से मैंने सारी दुनिया देख ली। आप हजरात माली एतबार से कितने स्ट्रांग, वो दुनिया आपने नहीं देखी जो हमने देखी। नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट में ऑकलैंड से लेके वेस्ट में तो एलए और सियाटल और सैन होजे, एक जगह देखी, इतना खूबसूरत, इतना अट्रैक्टिव, इतना हसीन मंजर आज तक नजर नहीं आया जितना रात के वक्त सहन में बैठ के काबे को देखने का मंजर। एक अजीब मजा आता है। क्या स्विट्जरलैंड, कई बार गया, और क्या डिज्नीलैंड, कई मरतबा गया। वो जो मंजर है, ऐसा इंसान इनर से स्पिरिचुअली एक ऐसा प्लेजर मिल रहा होता। तो जो नहीं गए वो इरादा करें, जो गए हैं वो बार बार जाए। वो जो गोल दीवार काबिये के काबा टूट गए, बारिश की वजह से तो दोबारा बना रहे, अब वो विद इन आवर्स तो नहीं बनेगा ना, कई दिन लगेंगे। ये लोग पूरा दिन काम करते हैं, शाम को दीवार की हाइट हुई चले गए घर, अगली मॉर्निंग को आए फिर दीवार गिरी हुई, घबरा गए अरब के काफिर। उनका रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स काबा था, लोग हज और उमरे पे आते थे तो उनको पैसे और फीस मिलती थी। अगर काबा ही खत्म हो गया तो हमें कौन लिफ्ट कराएगा? सूरह फील जो आज आपने जोक में नाम सुना उसके बाद वाला सूरह, लैलाते कुरैश इलाते इमरे लतशताए वस्वे, कुरैश के सारे बिजनेस कारवांस को प्रोटेक्शन मिलता था इसलिए कि ये लोग काबे की हिफाजत करते हैं। खैर, तो परेशान हुए, हजरत अबू तालिब के पास आए, कहा कि तुमने ये जो काबे को दोबारा बनाना प्लान किया तो पहले फंड्स लिए होंगे, हर काम में फंड्स तो जरूरी, इस्लाम भी शुरू हुआ तो पहले हजरत खदीजा की दौलत चाहिए थी, बाद में इस्लाम आगे बढ़ा तो फंड्स तो जमा किए होंगे। कहा कि हाँ जमा किए। कहा ये सारा माल हलाल है कि इसमें हराम भी है? बड़े बड़े डोनेशन देने वालों की मेजोरिटी के पास हराम होता, सब नहीं लेकिन हराम। कहा कि आए अबू तालिब भैया बिजनेस करते हैं, हलाल भी है हराम भी, और अरब के लोग तो डाके डालते थे, डाका माले हलाल है कि माले हराम है? माले हराम, हराम बिजनेस करते थे। उस जमाने के जो डेरी क्वीन हो गए उसके अंदर शराब और सुअर ही बिकता था और कुछ था ही नहीं। जो भी होगा उस जमाने में कुछ तो होंगे ना, ह्यूमन नेचर तो एक जैसी हराम। कहा कि अल्लाह अपने घर को माले हराम से नहीं देख सकता, इसमें से हराम पैसे उठा लो, जितना बच जाए उससे काबा बनाओ। अब माले हराम उठा लिया तो हलाल कम हो गए, पूरा काबा नहीं बन सकता। तो कहा जितना है उतना तो बना लो, जब पूरे फंड्स ना हो तो स्टेजेस के अंदर और फेजेस में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। हलाल पैसे से इतना काबा बना जितना आज है, और बाकी उन्होंने रोप या रस्सी लगा दी कि यहां तक काबा था ताकि हम भूले नहीं, और बाद में जब पैसे आएंगे इसको बना लेंगे। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि पैसे आने से पहले इस्लाम आ गया, पैगंबर ने ऐलान रिसालत किया, कुरैश के अरबों के सारे फंड अब पैगंबर के अगेंस्ट जाने लगे, अब काबा इसी तरह रह गया। अल्लाह ने क्या मैसेज दिया? मेरा घर खाना काबा, मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूं कि इनकम्प्लीट रह जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं कि इसके अंदर हराम पैसे का एक्सपेंड भी इस्तेमाल किया जाए। हमारे यहां मस्जिदें बनती हैं माले हराम से, हमारे यहां इमामबाड़े बनते हैं माले हराम से, हमारे यहां यतीम खाने और अस्पताल बनते हैं माले हराम से, हमारे यहां मजलिस में नजर और नियाज होती है उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माले हराम देते। मैं ये नहीं कह रहा कि सब जगह, मैं ये भी नहीं कह रहा कि मेजोरिटी में, लेकिन ये तो कह रहा हूं कि बहरहाल खासी तादाद पैसे वाले को अपने इनर को मुतमईन करना। इन्नल इंसान अला नफ्सिही बसीरा वलौ अल्का मआज़ीरा, सूरह दहर का नेबर सूरह, सूरह कयामत। चाहे आदमी लोगों के सामने कितने ही एक्सक्यूज करे, दिल से जानता ही हराम। अब उसको इनर को सेटिस्फेक्शन करना है, हराम कमाओ मस्जिद में दे दो तो अल्लाह हमारा गुनाह माफ कर दे, हराम कमाओ नजर नियाज में दे दो बहुत शानदार, अगर नियाज हो गई तो इमाम हुसैन हमारा गुना माफ करा दें। माल हराम नहीं चाहिए अहले बैत को, वो तथीरा है, तहारत है। तहारत खाली जिस्मानी तहारत का नाम नहीं है, माल भी हलाल होना चाहिए, नहीं चाहिए हराम माल से किसी किस्म की दीन की मदद। ये आपने मक्के में देखा, आप जाएंगे इम्पॉसिबल है कि आप ये दीवार नहीं देखें, हिजर इस्माइल। और फिकी एतबार से भी इसका जिक्र कि तवाफ में इसको भी इंक्लूड करना है। मदीने गए, हां मदीने में हो सकता है कि सब आदमी आपको हिस्ट्री ना बताए, लेकिन एक हिस्ट्री हर एक को मालूम है कि जब रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी बनाई और डे बाय डे क्राउड बढ़ता गया, तो अब इस मौके पे शैतान, असल आयत शैतान वाली, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अन ला ताबुदु शैतान, ये शैतान के मुख्तलिफ ट्रिक्स हैं। तो अब शैतान ऐसे मौके पे क्या करता है जब कोई कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए, स्प्लिट डिवाइड एंड रूल, कौम को दो हिस्सों में करना। चुनाचे رسول اللہ کے پاس ایک ایکسکیوز لے کر آئے کچھ لوگ منافق. پرسوں عاشورے کی نماز میں آپ سورہ منافقون ایک بار پھر پڑھیں گے اور کل جمعے کی نماز میں بھی شاید سورہ منافقون کی تلاوت ہو جائے. منافق, یا رسول اللہ کراؤڈ بہت ہونے لگا, مسجد النبوی میں اسپیس نہیں رہی, لوگوں کو تکلیف ہوتی, مدینے میں بارش بھی بہت ہوتی ہے, مدینے میں گرمی بھی بہت ہوتی, ہم چاہتے ہیں کہ ایک اور مسجد بنا لیں تاکہ آدھا مجمع ادھر آئے آدھا ادھر جائے. مسجد زرار بنائی. جو شو تو یہ کیا کہ جیسے مسلمانوں کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں, شو یہ کیا کہ جیسے ان کو نمازیوں پہ بہت رحم آ رہا, ارے اتنی بارش میں اگر یہ باہر کھڑے ہیں اور پیغمبر نماز پڑھا رہے تو یہ تکلیف ہو جائے, اتنی گرمی میں یہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں, یا رسول اللہ تاکہ مجمع آ جائے ایک اور مسجد بناتے ہیں, مسلمان بہت بڑے ہو گئے ہیں, سٹی میں دو مسجدیں ہونا چاہیے. ایک مسجد بنائی. اللہ کا رسول وہ ہے جو دنیا میں مسجدیں بنانے کے لیے آیا. من بنا مسجدن بن اللہ بیتن فی الجنہ سبعین بیت. جو دنیا میں ایک مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں فوراً 70 محل اس کو بنا کے دے دیتا. پیغمبر جگہ جگہ مسجد بنا رہے ہیں. یہ اونلی مسجد تھی, پیغمبر نے آرڈر دیا کہ جا کر ڈیمولش کرو. اور خالی اس مسجد کو توڑا نہیں, کہا مدینے کا جتنا گاربیج اور ٹریش اور کوڑا کرکٹ ہے وہ سب یہاں پھینکو. آج بھی وہاں پہ واش روم یا ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں اس جگہ کے اوپر. پیغمبر مسجدیں بنانے والا ایک مسجد توڑ رہا. بہترین عبادت ہے مسجد کی کنسٹرکشن میں حصہ لینا, مگر کہا کہ اگر انٹینشن اور نیت ٹھیک نہیں ہے تو نہیں چاہیے اللہ کو وہ عمل. اچھے سے اچھا عمل اللہ کے ہاں بیکار ہے اگر تمہاری انٹینشن پیور اللہ کے لیے نہیں. پاپولر بننا, شہرت چاہیے, ایڈورٹائز چاہیے, لوگ آ کے تمہاری تعریف کریں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو دے گا نیکی کے بدلے میں, انٹینشن آپ کا یہ نہیں ہو. یہ دو چیزوں کا خیال امام حسین کی عزاداری میں سب سے زیادہ رکھنا. دنیا بھر میں صاحبان ایمان ان تاریخوں میں نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. آج کل اینٹی نظر و نیاز ایک کمپین بھی چل رہی, عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لفظ ان کی زبان پہ آ کیسے جاتا. اتنا پیسہ قوم کا کیوں ویسٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ ویسٹ ہے, پیسے کا اس سے بہتر کوئی استعمال ہی نہیں. ہم کہہ سکتے ہیں ویسٹ جو آپ کے ہاتھ میں آئی فون, ہم ویسٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ, ہم ویسٹ کہہ سکتے ہیں جو آپ نئے ماڈل کی گاڑی میں بیٹھے, اس کو تو شاید ویسٹ کہا جائے. نظر نیاز, حاضری, مہدی, عزاداری کا خرچہ, اور یہ لفظ بڑے آرام سے استعمال ہو جاتا, مگر وہ اپنی جگہ وہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسرا ایکسٹریم, کام صرف آقا حسین کے لیے ہونا, کام صرف آقا عباس, نیت بالکل پیور ہونی چاہیے, اور مال حرام کہیں سے نہ آنے پائے. بعض علماء, بلکہ بعض علماء کہ آقا سیستانی کی اسلامک لاؤ میں بھی ملے گا. فطرہ, فطرہ ایک بہت اہم عبادت ہے ہمارے یہاں, اس کو شارٹ کر کے پڑھا جاتا. ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ آبجیکشن دماغ میں آتا ہے, فطرے فطرہ فطرہ نہیں ہے جو رمضان کے بعد آپ دیتے ہیں, اس کا نام ہے زکات الفطرہ. آج کتنے ہی لوگ اپنے لوگ کہتے ہیں یوتھ, مولانا ہم شیعوں کے یہاں زکات ہی نہیں, یہ فطرہ کیا, یہ بھی زکات, اس کا اصل نام ہی ایکچوئل نام ہی زکات الفطرہ. یہی وجہ ہے کہ نان سید کا فطرہ سید پہ حرام, کیونکہ زکات ہے, یہ بھی زکات ہے. خیر تو ادھر میں نہیں جا رہا, یہ بتا رہا ہوں کہ لیک آف نالج کی وجہ سامنے کی چیز بھی آدمی جو ہے وہ اس پر اعتراض کر دیتا. فطرہ, اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ مال حلال سے ہونی چاہیے. جو بھی اس کا اماؤنٹ ہے, $5, $10, $3, $2. اب یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ توضیع المسائل یہ اسلامک لاء میں لکھا. اگر کسی کے پاس نہیں ہے مال حلال, سب حرام مال ہے, یا ایٹ لیسٹ اس وقت سارا مال حرام, فطرہ تو فوراً دینا. یہ لکھا ہے نا کہ پھر کسی ایسے مومن سے قرضہ لو جس کے پاس مال حلال ہو, اس سے فطرہ پیمنٹ کرو, اور پھر یہ قرضہ جا کے پیمنٹ کر دو چاہے وہ اپنے ہی گھر کے پیسے سے کرو. मगर आगे जो फितरा जा रहा है वो हलाल होना चाहिए, चाहे कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। तो ये हलाल जो इतनी इसकी इंपॉर्टेंस है, मसला ये नहीं है कि नऊज़ु बिल्लाह इस मजमे में या कम्युनिटी में कोई हराम कर रहा, मसला है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो हराम आ जाता। हराम तो फिर हराम है ना, अल्लाह कहता मुझे काबा भी नहीं चाहिए अगर हराम माल लेके आ रहे। रसूलुल्लाह कहते हैं मुझे मस्जिद भी नहीं चाहिए, मस्जिद को डिमोलिश कराऊंगा अगर नीयत के अंदर प्योरिटी नहीं। हर इबादत स्पेशली आजादारी में दो चीजें बहुत जरूरी, जनाब अब्बास जैसे मासूम की बारगाह में हाजिरी दे तो कितना पाक और पाकीजा होना चाहिए। खबर खवातीन बाज़ औक़ात अपनी एक शरीयत बनाती हैं, फुला चीज पे ना महरम की निगाह पड़े फुला पे ना पड़े, वो बात की चीज। पहले ये देखना है कि इसके अंदर कहीं से कोई हराम ना आए। लेकिन मीरास हराम, वसीयत की पाबंदी ना करना माल हराम एंटर हो रहा, नाबालिग के पैसे का ख्याल ना करना माल हराम एंटर हो रहा। घरों में माल हराम कहां से आ रहा? और शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन, वो पूरी कोशिश ये करेगा। ये जुमले से आप हट ना होइए, ये सिर्फ खिताबत का जुमला। वो पूरी कोशिश करेगा कि हुसैनियों को यजीदी बनाए ताकि इमाम जमाना की फौज तैयार ना हो। और उसको आका हुसैन का जुमला याद है कि लकत मोलियत बुतूनों को मिनल हराम, आशूर के दिन यजीदी लश्कर तुम्हारे पेट में हराम आ गए। हम और आप इमाम की बात सुनते हैं, टेंशन नहीं कर देते, शैतान एक एक बात नोट करता। अच्छा, देयर इज ए वे टू कन्वर्ट हुसैनीत फ्रॉम हुसैनियत टू यजीदियत, माल हराम। तब ये इतनी सारी मैंने मिसालें दी, उसमें खुमस को भी ऐड कर लीजिए। खुमस देना इनफ नहीं है, सही तरीके से देना है, सही आदमी को देना। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके पास इंडिया पाकिस्तान से आते होंगे कि भाई बहुत अच्छा नेकी का प्रोजेक्ट है, खुमस डोनेशन दीजिए, चैरिटी कीजिए। इस्लाम में ओनली खुमस तो नहीं है ना, लेकिन खुमस गलत दे दिया तो देने के बाद भी माल हराम बन गए। खुमस का मसला तो आपको मालूम है ना कि 100 डॉलर में 20 डॉलर खुमस है, अगर नहीं दिया तो खाली 20 हराम नहीं है, पूरे 100 हराम। और खुमस भी रोजे की तरह है कि अभी चांद नजर आया अगले दिन आपको रोजा रखना है, खुमस वाजिब हो गया उसी दिन आपको पेमेंट करना। अच्छा, सबके तरीके हैं लेकिन मजलिस में वक्त नहीं। जनाब अब्बास की हाजिरी के हवाले से भी बात करना थी, और जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा कि गदीरी यजीदी कैसे बनते हैं, मैंने कहा था दो या तीन बहुत अहम चीजें, उनमें से एक माल हराम। आज जितना भी हुआ आज ये मौजू मुकम्मल हुआ। अब एक और बहुत अहम पॉइंट है जो गदीरियों को यजीदी बना देता है, पता ही नहीं चलता आदमी को। देखिए, बहुत सारी चीजें खाने पीने की ऐसी कि आपको नहीं मालूम होगा और आपने खा ली और नुकसान पहुंच जाता है। कहा जाता है, अब जो बात मैं कह रहा हूं ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं, कि एक खास किस्म की मछली कोई है जिसको खाएं और उसके साथ फिर मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो आदमी के बदन के ऊपर वो सफेद दाग हो जाते हैं। कहा जाता है खास किस्म की मछली, अब हमको नहीं पता, हमने कोई भी मछली खा ली अगर वो वाली निकल आई तो नुकसान तो होगा ना। इसी तरह से ये चीजें जो गदीरी को यजीदी बनाती, जरूरी नहीं है कि आप इस इंटेंशन के साथ ये काम करें कि मुझे यजीदी बनना है, नऊज़ु बिल्लाह, कोई नहीं बनेगा, मर जाएंगे, नहीं बनना। लेकिन अगर वो चीज आ गई उसमें से एक ये माले हराम है, तो मैंने खाली लफ्ज माले हराम नहीं कहा तीन दिन से, उसकी डिफरेंट वो एग्जाम्पल दी जो हमारे घरों में। और उसी में एक आखिरी बात सुन लीजिए, तफसील नहीं जा रहा। अगर किसी के यहां उसका उसकी वाइफ वो भी काम करती है, चाहे दुकान में चाहे कहीं और, चाहे बराबर से काम करे चाहे आवर्स अलग हो, उसके पैसे का मसला फिर अलग हो जाता। शौहर को हक नहीं है कि उसको इस्तेमाल करे, कैलकुलेशन करना होगा। मैंने 8 घंटे काम किया, इसने 4 घंटे पार्ट टाइम काम किया, इसका इतना बना, मेरा इतना बना, मीरास में ये जाएगा, वसीयत में वो जाएगा, पूरी डिटेल है। मेंबर से आप ये तवक्को कर भी नहीं सकते, ये सारी डिटेल है। लेकिन इतना हमारे लिए इनफ है कि करबला वालों ने हमको यह मैसेज दिया, भूखा रहा जाएगा, प्यासा रहा जाएगा, دین خدا پہ نو کمپرومائز. فیال ہے تنی کن تو محکم کا جملہ آج بھی آپ نے کہا ہوگا, اور مجھے تو پتا چلا کہ جعفری سینٹر اٹلانٹا میں زیارت وارثہ روز نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. تو اب کربلا کا میسج کیا تھا کہ دین کے بارے میں, شریعت کے بارے میں نو کمپرومائز, چاہے بھوکا رہنا پڑے چاہے پیاسا رہنا پڑے. ایک جملہ کربلا میں کئی جگہ پہ آیا کہ حسین کے ساتھی جو ہیں, بلکہ ایون حسین کے بعد فیملی ممبرز جن میں حضرت عباس بھی شامل, ان کو آفر تھی یزید اور ابن زیاد اور عمر صاحب کی طرف سے آفر تھی, تم چلے جاؤ کچھ نہیں کہیں گے, کھانا چاہیے تو کھانا ہے, پانی چاہیے تو پانی, حسین کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا. ہاں حسین کے لیے تو یہ کہا گیا کہ جانور کے بل میں بھی جا کے چھپیں گے تو وہاں جا کے بھی ان کو تو قتل کریں گے, یعنی شہید کریں گے, لیکن آفر تھی دوسروں کے لیے. کسی ایک نے یہ آفر قبول نہیں, جہاں دین کی بات آ جائے, خدیر کی بات آ جائے, حجت خدا کی بات آ جائے, حکم خدا کی بات آ جائے, بھوکے بھی رہیں گے, پیاسے بھی رہیں گے, تیر بھی کھائیں گے, تلوار بھی کھائیں گے. ہم بھی اسی کربلا کو مانتے ہیں, ہمارا بھی یہی اسٹائل ہونا چاہیے. اور خاص طور پر کربلا کے بچوں کو دیکھیں, بہت کمسن بچے بھی ہیں لیکن وہ بچے بھی ہیں جو بالغ نہیں ہیں مگر ممیز سمجھدار. کیا کسی نے کمپلین کی کہ چچا, مامو, آقا پیاس بہت لگ رہی؟ مان لیجئے نا یزید کی بات ہم سے برداشت نہیں ہو رہا. ہاں کمپلین ضرور کی بچوں نے, اعلی تش اعلی تش اعلی تش, آج اعلی تش کا دن, مگر یہ نہیں کہا کہ اعلی تش سے بچنے کے لیے ہم یزید کی بات مان لیں. نہیں, یہ بچے جناب عباس کی طرح صاحب معرفت نہیں, چھوٹا بچہ مگر اتنی بات جانتا ہے, اور ہم اور آپ ذرا سے مسائل سیکھ کے کلکولیشن کرنے کو تیار نہیں. تو پھر یقیناً جب ہم ایک جملہ کہیں گے تو وہی جواب ملے گا جو آقا سجاد نے کہا تھا. آقا سجاد کا ایک واقعہ ہر عمرہ کرنے والے قافلے میں پڑھا جاتا ہے, ہر حج کرنے والے قافلے میں پڑھا جاتا ہے, ہر قافلے میں. اور کہاں پڑھا جاتا ہے؟ جہاں سے لوگ احرام پہن رہے ہیں, احرام پہنایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے آپ کہو لبیک اللہم لبیک. اب فوراً واقعہ پڑھا جاتا ہے کہ جب چوتھے امام نے کہا لبیک, بے ہوش ہو کے گر گئے, پانی چھڑکا گیا, مولا ہوش میں آئے, مولا آپ کی یہ حالت؟ کہا کہ میں ڈرا کہ میں کہوں گا لبیک, اے خدا میں حاضر ہوں, اللہ کہے لا لبیک, نہیں چاہیے مجھے تمہاری حاضری. اس حالت کے ساتھ آ رہے ہو؟ اب یہ نعوذ باللہ اپنے لیے نہیں, آپ کے میرے لیے. اسی طرح سے ہم کہیں گے مولا آج شب جمعہ امام زمانہ آ جائیے, پرسوں عاشورے کو کہیں گے امام زمانہ آ جائیے, اور امام زمانہ کہیں گے میں نہیں آؤں گا اگر تم اسی حالت میں بیٹھے رہے. ہماری فریاد اور استغاثے کا یہ جواب کہیں وہاں سے نہ آ جائے. یہ تو چوتھے امام نے حج اور عمرے میں تو باقاعدہ یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے لیے اصول یہ یاد رکھیے گا کہ دین خدا پہ نو کمپرومائز, مکان چھوٹا مل جائے کوئی بات نہیں, گاڑی ذرا پرانی ہو کوئی بات نہیں, ٹیلی فون ذرا پرانے ماڈل کا ہو کوئی بات نہیں, عورتیں اتنا زیور نہ خرید سکیں کوئی بات نہیں, بلکہ بھوکا رہنا پڑے پیاسا رہنا پڑے سب برداشت, کیونکہ ہم اعلی تش کو ماننے والے ہیں. میدان کربلا میں حسین کے بچوں کی پیاس کو آج پورا ایک دن ہو گیا. 7th of محرم کو دریائے فرات پہ پہرا لگ گیا, یہ جنگلی جانور بھی آ کے پانی پی سکتا ہے, حسین کے بچوں کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملے گا. اور آج 8th of محرم آ گئی, اعلی تش اعلی تش اعلی تش, پیاس ہائے پیاس, مگر اتنی فریاد بچے اس لیے کر رہے ہیں جو دو دن پہلے میں نے مسائل پڑھے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں, وہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. بچے فریاد اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں عباس کی شکل میں ایک سقا نظر آ رہا, انہیں عباس کی شکل میں ایک مشکل کشا نظر آ رہا, उन्हें अब्बास की शक्ल में एक बाबुल हवाइज नजर आ रहा, उन्हें अब्बास की शक्ल में आलातश आलातश का जवाब देने वाला नजर आ रहा। जब तक अब्बास जिंदा, पानी आएगा हर बच्चे को यकीन। तो एक तरफ अल अतश, हमारे और आपके बच्चे भी इस वक्त तैयार बैठे हैं कि अल अतश को आपको और याद दिलाएं, मगर बच्चों के दिलों का सहारा वो अब्बास है, जिसके लिए सिर्फ वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, बाकी परसों के मसाइब दोबारा नहीं पढ़ना। वो अब्बास है कि जो मुश्किल कुशा के घराने का मुश्किल कुशा, हुसैन का सहारा भी अब्बास है, जैनब के दिल की ढारस भी अब्बास है, नन्ने नन्ने बच्चों की तमाम उम्मीदें। अब्बास का लकब बाबुल मुराद है, हर मुराद पूरी होती। अभी हमने आका अब्बास की खिदमत में हाजिरी पेश की, अभी अभी आप हाजिरी से फारिग होके आए, बाबुल मुराद। और मैदान करबला में अब्बास का सबसे बड़ा इम्तिहान ये कि अब्बास ने बचपने से लेकर शब आशूर तक एक जुमला इतनी बार इतनी बार इतनी बार सुना कि आम इंसान भी होता तो कभी ना भूलता, ये तो फिर भी अब्बास वारिस अली है। क्या जुमला सुना? अब्बास, तुम्हें अली ने सिर्फ करबला के लिए मांगा था। एक बार नहीं सुना, जब से अब्बास दुनिया में आए यही जुमला सुन रहे। बात बहुत लंबी भी ना हो जाए लेकिन बगैर दलील के भी ना हो, तो दो छोटे से वाकयात पढ़ दूं जो आपने बहुत सुने। 21 रमजान है, 41 हिजरा है, शहर कूफा है, मौला का वो घर है कि जो आज भी आपको नजर आता। अली दुनिया से जा रहे हैं, हर इमाम जाते वक्त बाद वाले इमाम का इंट्रोडक्शन कराता। एक मरतबा बस अली दुनिया से जा रहे हैं, आखिरी आखिरी अली की जिंदगी के लम्हे, आवाज दी, पूरा घर अली के कमरे में जमा। 12 बेटे, 16 बेटियां, 10 बीवियां, उस वक्त जितने जिंदा थे सब वहां। एक बार अली ने आवाज दी, हसन बेटा मेरे बहुत करीब आ। हसन करीब आ गए, हसन बेटा हाथ फैलाना, फिर एक एक बेटे से, एक एक बेटी से, एक एक बीवी से कह रहे हैं, हसन के हाथ पे हाथ रखकर बैत करो, आज से हसन तुम्हारा इमाम, हसन तुम्हारा आका, जो हसन कहेगा समझो मैंने कहा। वन बाय वन अली की सारी फैमिली बैत कर रही है, ये वादा कर रही। फिर अब्बास की बारी है। एक बार आका ने कहा, हसन बेटा जरा एक तरफ हट जाना, हुसैन जरा तुम आ गया। हुसैन आ गया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ पे रखा, अली का सर जख्मी, सर पे ड्रेसिंग है येलो कलर की, सब घुमा नहीं सकते। अली ने किसी बीबी के रोने की आवाज सुनी, कहा जैनब बेटी अभी मैं जिंदा हूं, ये कौन रो रहा? जैनब ने घबरा के कहा, बाबा अम्मा उम्मुल बनीन रो रही। अली ने कहा, उम्मुल बनीन जरा करीब तो आना, अभी मैं जिंदा हूं, क्यों रो रही? उम्मुल बनीन ने हाथ जोड़े, आका सिर्फ इतना बताइए मेरे अब्बास ने क्या गलती कर दी, मेरे अब्बास की खता क्या? हुसैन ने कहा, उम्मुल बनीन ये क्या कह रही? कहा, सबका हाथ आपने आका हसन के हाथ में दिया, अब्बास का हाथ आका हसन के हाथ में ना दिया, आका हुसैन के हाथ में। अली जैसे साबिर की आंखों में आंसू, उम्मुल बनीन अभी मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं हूंगा, तुम जिंदा होगी जब देखोगी कि आखिर अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में क्यों दिया गया। और शब आशूर भी नहीं, उससे कुछ पहले कल 9th of Muharram की से पहल। देखिए, उमर साद ने 9th of Muharram को जंग शुरू कर दी थी, पहला तीर फेंक दिया था, हुसैनी खेमों में यह तीर आके गिरे। हुसैन ने कहा, अब्बास जाओ हमारे साथ के पास और उससे कहो कि हमें एक रात की मोहलत चाहिए। अब्बास चले, हुसैन ने अपने दो बचपने के दोस्तों को अब्बास के साथ कर दी, कहा कि जवान खून है, शजा है, बहादुर है, जोशीला है, उमर साद की किसी बदतमीजी और गुस्ताखी के नतीजे में इसे जलाल ना आ जाए, तुम जाओ। अब्बास तुम्हारा चचा कह के एहतराम करता। ये दोनों चले, एक का नाम तो हबीब इब्ने मुजाहिर है, एक शायद बुरैरे हमदानी। खैर वो बाकी बातें तो आज पढ़ने की नहीं है। अब्बास आलमदार गए और उमर साद से एक रात की मोहलत लेके आ गए, वापिस आ रहे। हबीब इब्ने मुजाहिर ने अपने साथी से कहा कि वो दिन याद है जब हमारे मौला ने अब्बास की मां से शादी की थी और उम्मुल बनीन रुख्सत होके आई थी। वो बुरैर कहते हैं कि आए हबीब, क्या वो भी कोई भूलने का दिन है? हर वक्त आंखों के सामने वो मंजर। हबीब ने कहा, और ये भी याद है ना कि मौला कितना खुश था? बुरैर ने कहा, जिंदगी में हमने अली को इतना खुश बहुत कम देखा। लेकिन हबीब ने कहा, यह भी याद है कि मुसलसल उस शादी में जब दुल्हन आ रही है, मुसलसल मेरा मौला क्या कह रहा था? कहा कि हाँ, दिल पर लिखा हुआ है। यही तो कह रहे थे कि ये शादी तो सिर्फ मैंने करबला के लिए की है कि मेरा एक वारिस जानशीन करबला में मेरे हुसैन की मदद कर। दोनों बुजुर्ग, दो बूढ़े आदमी बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। आदमी बुढ़ापे में बहुत पुरानी पुरानी बातें करता, बहुत पुरानी बात कर रहे, 30-35 साल पुरानी, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेकिन अब्बास समझ गए, अली के वारिस हैं, समझ गए। कहा, आता शज अन्न या अम्मी हबीब, चचा हबीब ये बातें याद दिलाकर आप मुझे जोश दिलाना चाहते? आका हुसैन से इजाजत लेके आइए, कल शाम तक कूफे के दारुल अमारा पर हुसैन का आलम लहरा रहा होगा, बस एक बार इजाजत दिलवा दीजिए। मगर मैं जो जुमला कह रहा हूं वो ये कि बार बार अब्बास को ये याद दिलाया गया, तुम करबला के लिए, तुम करबला के लिए, तुम करबला के लिए। और अगला दिन आशूर का दिन आया, हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। जिन्होंने पहले कभी सोचा भी ना था कि हुसैन पे ये वक्त आएगा और हमें हुसैन की मदद करना पड़ेगी, उन बूढ़ों को जाने की इजाजत मिली, उन जवानों को जाने की इजाजत मिली, उन बच्चों को जाने की इजाजत मिली। और जो सारी जिंदगी करबला की तमन्ना रखता था, आशूर का दिन आया, उसी पे पाबंदी लग गई, अब्बास तुम तलवार नहीं चला सकते। जरा सोचिए, आप अगर करबला में होते, मैं अगर करबला में होते, और नन्नी सकीना, इमाम जादे, नन्नी नन्नी बच्चियां आलतश 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 कह रही होती, क्या हम बर्दाश्त कर सकते थे? अब बात सुन रहे हैं, मगर ये है हुक्म इमाम। हम तो कहते मौला आप मना भी करें, लेकिन आपके बच्चों की खातिर हम आपका हुक्म तोड़ के जान कुर्बान करते हैं। लेकिन अब्बास ने कहा, इताअत इसे कहते हैं। बच्चे फरियाद कर रहे हैं, बच्चियों की आवाज अब्बास के कान में आ रही है, लतश लतश। हुसैन ने कहा, अब्बास नहीं। और शुरू में हुसैन ने एक अजीब जुमला, एक आम जुमला कहा, जब भी अब्बास गए, मौला पहले मुझे जाने दीजिए, एक अकेला अब्बास पूरे लश्कर यजीद के लिए काफी। हुसैन का जवाब होता था, नहीं अब्बास तुम नहीं जाओ, तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो। आलमदार नहीं जाते हैं। अकबर का लाशा आ गया, अब्बास सड़क के गए, मौला अब तो जाने दीजिए। कासिम के बदन के टुकड़े आ गए, मौला अब तो जाने दीजिए। शहजादी जैनब के लाल और मोहम्मद के लाशी आ गए, मौला अब तो जाने दीजिए। और हर बार एक जवाब देते, अब्बास तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है, तुम मेरे लश्कर के आलमदार हो। आलमदार को नहीं भेज सकता। लेकिन एक वक्त वो भी आ गया कि जब अब्बास आए और कहा कि आका मुझे मक्तल में मरने की जाने की इजाजत दी, हुसैन ने कहा तुम मेरे लश्कर के आलमदार। अब्बास ने तड़प के कहा, लेकिन मौला वो लश्कर कहां रहा? मौला वो लश्कर कहां रहा जिसका मैं आलमदार हूं? मेरे सारे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हुसैन ने कहा, लेकिन अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी भी हो, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अब्बास कोई आर्गुमेंट नहीं करते, सर झुका के खेमे में आ गए, लेकिन बहुत परेशान। एक मर्तबा नन्नी सकीना चचा के पास आई, कहा चचा ये सारे बच्चे, अभी शबी बरामद होगी ना, इन्हें बच्चे आएंगे ना, चचा ये सारे बच्चे मेरे पास आए और सबने कहा तुम मुश्किल कुशा की पोती हो, हमसे प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, कहीं से पानी ला सकती हो? चचा मैंने उनसे वादा ले लिया, तुम्हारे लिए पानी आ रहा, और ये वादा सिर्फ तेरे सहारे पे लिया है। चचा मैंने तेरी वजह से सबसे वादा कर लिया, पानी आ रहा है चचा, तेरी सकीना दरखास्त करती है पानी आ जा ले आ। अब्बास घबरा के कहते हैं सकीना बेटी मैं पानी लाने को तैयार हूं, आका इजाजत नहीं दे रहा। सकीना ने बड़े फख्र के साथ कहा चचा चले मैं आपकी सिफारिश करूंगी, आज तक बाबा ने मेरी कोई बात नहीं टाली, मैं आपकी सिफारिश करती हूं। अब्बास गोद में लेके सकीना को हुसैन के खेमे में गए। हुसैन ने यह मंजर देखा, इमाम मासूम है, बाबे मदीनतुल इल्म के वारिस हैं, समझ गए कि सकीना क्यों आ रही। हुसैन ने कहा अब्बास मैं समझ गया सकीना को क्यों लाया जा रहा, अब मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन सकीना अभी चचा की सिफारिश कर रही है, बाद में चचा बहुत याद आएगा जब तमाचे लग रहे होंगे, जब कोड़े पड़ रहे होंगे, यही चचा जिसकी सिफारिश कर रही। और अब्बास बहुत जल्दी कि कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन हुक्म वापिस ले ले, सकीना को गोद से उतारा और घोड़े की जानिब बढ़े। हुसैन ने कहा अब्बास कहां जा रहे, मेरा आका अब्बास घबरा गया कहीं आका रोक ना दे, मौला आप ही ने तो इजाजत दी है। कहा वो मैंने इजाजत दी, लेकिन अब्बास तुम इस तरह नहीं जाओगे, पहले जाके जैनब से भी इजाजत लेना। जरा सोचिए 55 बरस की बूढ़ी बहन, 34 साल का कड़ियल जवान भाई, जिस बहन ने मां बन के इस भाई को पाला, वो जवान भाई बूढ़ी बहन के सामने जाके खड़ा हो जाए और हाथ जोड़कर कहे शहजादी जैनब अब इस गुलाम को भी मरने की इजाजत दीजिए, क्या कयामत गुजरी होगी जैनब कुबरा के दिल में। बहनों से पूछिए, और ऐसी बहन जिसने भाई को बचपने से पाला, सर से पैर तक देखा, अब्बास तुम्हें पता है ना जब मुझे बाबा याद आते थे मैं तुम्हारा चेहरा देख लेती थी, अब्बास शबीह अली मुर्तजा हैं, अब तुम जा रहे, लेकिन अब्बास ये है जैनब। अब्बास नाना के दीन की खातिर जैनब ने हर कुर्बानी दी, हर कुर्बानी देगी, जाओ तुम्हें भी रुख्सत किया। हां जाते जाते एक जुमला सुन लो, एक दिन मैं बाबा के पास कूफे में बैठी थी, बाबा की निगाह मेरे हाथों पर बाजुओं पर पड़ी, मेरा बाबा रोने लगा। मैंने कहा बाबा बूढ़े बाप के जवान बेटियों को देख के खुश होते हैं, आप रो रहे हैं। कहा जैनब यही कूफा जहां आज शहजादी बन के बैठी है, इसी कूफे में कैदी बना के लाई जाएगी, सर पे कोई चादर भी नहीं होगी, बाजुओं में रस्सियां बंधी होगी, वादा कर ले बद्दुआ ना करे। अब्बास बाबा ने कहा मैंने वादा तो कर लिया, मगर दिल में ख्याल आया जिस बहन का एक भाई होता है कोई उसकी चादर पे हाथ नहीं डाल सकता, मैं तो 12 भाइयों की बहन हूं और अब्बास जैसा मेरा भाई, लेकिन अब्बास आज जो तुम चले तो अब जैनब को पता चल गया वो वक्त आ गया है कि तुम नहीं जा रहे जैनब की चादर छीनी जा रही है, तुम नहीं जा रहे जैनब कैदी बनने जा रही है, मेरे पास वो मेरी रस्सियां बंधेगी, लेकिन जाओ नाना के दीन के लिए हर कुर्बानी जैनब देगी, यह है जैनब। अब्बास चले, बाज़ ज़ाकिरीन एक जुमला कहते हैं कि जिसमें कोई ताज्जुब भी नहीं, हुसैन ने पाबंदी लगाई थी अब्बास पानी लेने जा रहे हो, जंग करने नहीं, तलवार लेके नहीं जाना, खाली नैजा हाथ में लेके जाना है। नैजा लेके अब्बास ने 30,000 के लश्कर को फुरात से किस तरह भगाया, जरा सोचिए तो अक्ल इंसानी हैरान हो जाती है। चले अब्बास, नैजा है तलवार की भी इजाजत नहीं। फिजा खेमे के दरवाजे पे अब्बास को जाता देख रही और एक मर्तबा एक आवाज दी, ये बाज़ उलमा ज़ाकिरीन ये जुमला पढ़ते हैं, आवाज का शहजादी जैनब जब कभी मैं आपको आपके बाबा के हालात बताती थी जैनब के पैदा होने से पहले कि आपका बाबा बदर में कैसा जिहाद कर रहा था, ओहद में किस तरह जुल्फ़िकार चला रहे थे, खंदक में किस तरह से अमर इब्ने अब्दुबुद का खातिमा, और खैबर में किस तरह मरहब को कत्ल करके खैबर फतह किया, तो आप अक्सर पूछती थी ना अम्मा फिजा काश मैं होती और अपनी आंखों से अपने बाबा का जिहाद देखती। आप पूछती थी ना आइए दरे खेमा पर आके अब्बास का जिहाद देखिए, ये अब्बास जिहाद नहीं कर रहा, ये खैबर के मैदान में मेरा मौला अली जुल्फकार चला रहा। और अजीब शान के साथ अब्बास फरात के किनारे गए और वापस आए, पानी लिया फेंक दिया और वापिस आए। बस एक मरतबा जा रहे हैं तो बच्चों को अब्बास नजर आ रहे, वापिस आए उमर साद ने आवाज दी, सिपाहियों पानी खेमे में न जाने पाए। एक बार पानी खेमे में पहुंच गया तो गजब हो जाएगा, चारों तरफ से फौज ने घेरा। जो जुमले मैंने परसों कहे थे उसको दोहरा नहीं रहा हूं, मुख्तसर। अब बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहे, घर के अब्बास बहुत तवील कामत है, नजर नहीं आ रहे। हाँ अलम अब्बास नजर आ रहा, अलम बढ़ रहा है बच्चे, यही अलतश अलतश की फरियाद करते हुए बच्चे। एक मरतबा तैयार खड़े, सकीना ने आवाज दी, बच्चों कूजे संभाल लो, मेरा चचा आ रहा है, अलम देखो अलम आ रहा है, अलम आ रहा है, मेरा चचा आ रहा है। एक मरतबा आलम दाई तरफ झुका, सकीना घबरा गई, खुदा बंदा मेरे अम्मू की खैर हो। बच्चे भी घबराए, कूदे फिसलने लगे, आलम संभल गए। उधर आलम संभला, इधर अलतश कहते हुए बच्चों के हाथ के कूदे। फिर आगे बढ़ा, सकीना ने कहा आलम करीब आ गए, बाई तरफ झुका, फिर आलम सीधा हुआ, फिर आलम गिरा, इधर आलम गिरा, उधर सकीना ने पानी का कूजा फेंका, खाली कूजा, और आवाज दी, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, चचा तेरी सकीना प्यासी रहेगी, चचा मैं अलतश करती रहूंगी, लेकिन चचा वापिस आ जा। बस एक एक रिवायत और सुन लीजिए जो शाम गरीबा दोहराऊंगा। चचा सकीना को पानी नहीं चाहिए, अलतश कहने वाले बच्चे तड़प रहे हैं, लेकिन अब एक सवाल करके मुख्तसर जवाब आज देता हूं, बाकी रिवायत शाम गरीबा मुख्तसर। ये पानी जो सकीना ने मांगा था, अलतश अलतश बच्चे के अपने लिए मांगा था क्या? पानी सकीना ने अपने लिए मांगा था? अपने लिए मांगा हो तो खुद पीती। नहीं, सकीना का शाम गरीबा का अमल बता रहा, पानी मांगा है, चचा को भेजा है, पानी की तमन्ना है, लेकिन सकीना को खुद पानी नहीं चाहिए, सकीना प्यासी रहेगी। कैसे पता? शाम गरीबा तो पानी आ गया ना, शाम गरीबा पानी आ गया, जैनब ने पानी लिया, चारों तरफ देखा, सकीना सो रही, करीब गई, शाना हिलाया, सकीना बेटी बेदार हो जा, आंखें खोल ले। सकीना घबराई, फूफी अम्मा क्या बात है? का सकीना पानी मांग रही थी ना, पानी आ गया। भाई इतना सुनना था, बच्ची का पहला जुमला अजीब था, कहा कि पानी आ गया यानी मेरा चचा अब्बास वापिस आ गया। जैनब ने कहा नहीं, पानी आ गया। सकीना ने कहा फूफी अम्मा तो आपने पानी क्यों ना पिया, अभी तो प्यासी है। कहा नहीं, पानी तुझे पीना। अरे अम्मा रबाब को पानी दीजिए। कहा नहीं, पानी तुझे पीना, मेरा भैया सज्जाद तो बुखार में बीमार है, पानी दीजिए। नहीं, पानी तुझे पीना। सकीना ने कहा तो फूफी अम्मा सब प्यासे हैं, सबको छोड़ के मुझे पानी क्यों दिया जा रहा? कहा इसलिए कि तू सबसे छोटी है, और दस्तूर यह है कि पहले छोटों को पानी देते हैं। सकीना ने अब्बास से पानी क्यों मांगा सुनिए। जैसे ही जैनब ने यह कहा, सकीना ने पानी का कूजा लिया, अब कुछ और बात नहीं कही, लेकिन पानी नहीं पिया। अलतश कहने वाली सकीना ने पानी नहीं पिया, पानी लेके मख्तल की जानिब दौड़ी। जैनब ने कहा सकीना बेटी कहां जा रही है? कहा फूफी अम्मा आप ही ने तो कहा था पहले छोटों को पानी देते हैं। मेरा असगर भैया करबला का सबसे कमसिन शहीद, जाके असगर को पानी पिला दूं। हाय मेरा असगर, अलतश 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 कहता रहा, अलतश
अलतश अलतश।